શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા 198 અને 199 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 128.
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો હતો કે સર્વજ્ઞ ભગવાનને કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે અભિલાષા, જિજ્ઞાસા કે સંદેહ નથી, તો પછી તેઓ કયા પદાર્થને વ્યાવે છે? ભગવાન સર્વજ્ઞને રાગ નથી, તેથી અભિલાષા નથી, અને કોઈ પદાર્થ સંબંધી અજાણપણો નથી એટલે જાણવા જિજ્ઞાસા નથી અથવા શંકા નથી, સંદેહ નથી કે આમ હશે કે તેમ હશે. પદાર્થનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં નિશ્ચિત રૂપે જણાય છે, તો પછી તેઓ કયા પદાર્થને ધ્યાવે છે અથવા શા માટે ધ્યાવે છે, કોને ધ્યાવે છે? તેઓ 197મી ગાથાના પ્રશ્નમાં આવતો આ પ્રમાણે તેનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે કે એક અગ્રણી વિષયનું સંવેદન તે ધ્યાન છે. ધ્યાનની પરિભાષા એવી છે કે એક વિષયમાં મુખ્ય અગ્ર સ્થિર બીજા કોઈ પણ વિષયને લીધા વિના, ઉપયોગ રાખ્યા વિના એક જ વિષયમાં ઉપયોગ અને એનું સંવેદન થાય તેને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. સમજી શકાય છે ને? ગુજરાત ભાઈ પાછું નામ છે, આપને સમજ શકતે? હા, ખુદ આચાર્ય મહારાજ ને એ સવાલ ઉઠાયા હૈ. ઇસકા ઉત્તર જે 198મી ગાથા મેં ચલતા હૈ કે એ ધ્યાન કિસકો કહેતે હૈ. પહેલે તો ધ્યાન કી યે પરિભાષા થી એક વિષય મેં અગ્ર હોના, મુખ્ય એક વિષય કો મુખ્ય કરકે ઉસકા સંવેદન કરના, ઉસી કાળ મેં દૂસરા કિસી ભી વિષય પ્રતિ લક્ષ નહીં જાના, और एक ही उपयोग एक ही विषय में स्थिर रहना, एकाग्र रहना, वो एक अग्र रूप ध्यान है. संवेदन एक अग्र का संवेदन रूप ध्यान है. सर्वात्म प्रदेश प्रदेश में परिपूर्ण आनंद और ज्ञान से भरा हुआ सर्वज्ञ भगवान परमानंद से अभिन्न ऐसा निजात्म रूपी एक विषय को संवेदन करते होने से उसको उनको परमानंद का ध्यान है. क्या बताया? भगवान सर्वज्ञ को परमानंद का ध्यान है. परमानंद का ध्यान है मतलब वो परम आनंद में लीन है, परम आनंद में स्थिर है. अपना निजानंद को छोड़ के वो कभी भी एक समय पर्यंत भी दूसरे विषय में उपयोग को ले जाते नहीं. ये बात तो सर्वप्रदेश में पूरा क्षेत्र में आत्मा का पूरा क्षेत्र में परिपूर्ण आनंद और ज्ञान से भरा हुआ सर्व भगवान की ये दशा है. तो अपने स्वरूप में परिपूर्ण ज्ञान और आनंद भरे हुए ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा परमानंद से अभिन्न एवं स्वयं के स्वयं से निज स्वरूप से अभिन्न ऐसा जो परमानंद, वो परमानंद में संवेदन, परमानंद में एकाग्र होने से भगवान को परमानंद का ध्यान है, सुख का ध्यान है, अर्थात वो परम सुख को ध्याते हैं, ऐसा उपचार से कहने में आता है. वहां तो ध्यान बदलता ही नहीं है, उपयोग बदलता ही नहीं है, फिर भी उसको ध्यान कहने में उसी का संस्कृति का है इस साइड में। अथो अत्रो पूर्व पक्षे परिहारम ददाति, पूर्व पक्ष मैंने अगली गाथा में जो प्रश्न उठाया है उसका समाधान करते हैं, उसका समाधान देते हैं। परिहार मैंने समाधान, जादी मैंने ध्यायति एकाकार समरसी भावे न परिणमती अनुभवती, सब एक ही अर्थ है। ध्यायति ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं इसका क्या है, एकाकार समरसी भावे न, जैसा अपना त्रिकाली स्वरूप है, एक स्वरूप एक अभेद अखंड ऐसा आकार, उसको एकाकार कहने में आता है और लीन होना उसको भी एकाकार कहने में आता है। वो एकाकार समरसी भावे न, समरस भाव वितराग भाव, जहाँ विषमरस नहीं है उसको समरस कहने में आता है। राग और द्वेष का विषमरस का अभाव है, ऐसा वितराग समरसी भाव में एकाग्र होकर भावेन कृतिया, एकाग्र होकर एकाग्रता द्वारा जो परिणमता है, परिणमती अनुभवती ध्यायती, वो तीनों शब्द का ये करते रहे जादी का ये खुलासा है। जादी मैंने ध्यायती, ध्यायती मैंने परिणमती, परिणमती मैंने अनुभवती, तो अनुभव को भी ध्यान कहने में आता है, परिणम को भी ध्यान कहने में आया है। कैसा ध्यान है कि एकाकार समरसी भाव रूप है, सकह करता ऐसा ध्यान का परिणमन का अनुभव का करता कौन है कि भगवान, भगवान सर्वज्ञ देव है, तीर्थंकर देव है, वो ध्यान का ऐसा अनुभव का करता है। किं ध्यायति, किसको ध्याता है, कि सौख्यम अपना जो अभिन्न सुख है, अभिन्न परमानंद है, उसका ध्यान करता है। किं विशिष्टम, किससे वो विशिष्ट है, उत्कृष्टम सर्व आत्म प्रदेश आह्लादक परमानंद परम अनंत सुखम, परम का दो अर्थ होता है, एक तो उत्कृष्ट और एक तो परम, मैंने उत्कृष्ट रूप से उपाधि, इसको भी परम कहने में आता है। परम मैंने उत्कृष्ट और उत्कृष्टपणे उपाधि जो है उसको भी परम कहने में आता है। तो अपना जो परम आह्लाद रूप जो आत्म सुख है वो उत्कृष्ट रूप से उपाधेय है, सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोत्कृष्ट रूप से उपाधेय भी है, दोनों बातें। जो सर्व आत्म प्रदेश में आह्लादक है, इंद्रिय विषय के जैसे नहीं है, जैसे स्वाद लेता है तो जीभ में ही स्वाद आता है और आँख स्थान है वो ऐसा पड़ा रहता है, ऐसा वो सुख है नहीं। ये तो सर्वात्म प्रदेश में सर्वांग सुख अनुभव में आता है, एक भी प्रदेश इसमें सुख के बिना सुख का अनुभव के बिना होता है। सर्व आत्म प्रदेश आह्लादक, सर्व आत्म प्रदेशों में आह्लादक होता है ऐसा परम उत्कृष्ट अनंत सुखम, प्रदेश सर्व प्रदेश में अनंत उत्कृष्ट सुख है, वो उत्कृष्ट सुख का जो वेदन है उस वेदन में भगवान सर्वज्ञ लीन है, तो भगवान सर्वज्ञ को सुख का ध्यान है ऐसा कहने में आता है। कस्मिन प्रस्तावे, वो उसका प्रस्ताव क्या है कैसा है, भूत संजात जब उत्पन्न होता है कब से वो होता है कि जो जो क्षण से है कस्मिन प्रस्ताव है मैंने कब से होता है कि जो क्षण से वो जन्म होता है उसका तब से मैंने सर्वज्ञपना होता है तब से वो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं तभी भी वहां से लीनता छूटती नहीं। भूत हो भूत हो मैंने संजात हो मूल शब्द अक्षातीत हो भूत हो भूत थैल हो किन विशिष्ट हो किससे वो विशिष्ट है कि अक्षातीत हो अक्षातीत हो इंद्रिय रहित हो अक्ष मैंने इंद्रिय इंद्रिय से अतीत मैंने पार इंद्रिय से पार को या इंद्रिय से रहित को इंद्रिय का जो ज्ञान का स्टेज है उसको पार होके अतिंद्रिय हुआ है अनिंद्रिय हुआ है उसको अक्षातीत कहने में न केवलम स्वयं अतिंद्रिय हो जात हो परेशान परेशान च अनक्ष हो इंद्रिय विषय न भवती इति अर्थ न केवलम सिर्फ फक्त इंद्रिय स्वयं अतिंद्रिय जात हो उते स्वयं अतिंद्रिय हुआ है इतना ही नहीं लेकिन दूसरों के द्वारा परेशान च दूसरों के द्वारा भी इंद्रिय विषय रूप होते नहीं अनक्ष मैंने इंद्रिय विषय रूप होते नहीं इंद्रिय विषय न भवती इति अर्थ इसका मतलब ये है कि भगवान सर्वज्ञ का स्वरूप ऐसा है कि वो इंद्रिय द्वारा उसको ज्ञान गोचर कर सकते हैं नहीं वैसे शरीर को देख देख सकते हैं तो भगवान सर्वज्ञ अपने ध्यान में विराजमान है ध्यानस्थ अवस्था शरीर की देख सकते हैं लेकिन सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है तो इंद्रिय ज्ञान का विषय इंद्रिय ज्ञान का जो विषय है वो आत्मा का स्वरूप कभी हो सकता है नहीं ये तो 172 में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आगे आचार्य महाराज ने कही पुनरपि किम विशिष्ट हो और किससे विशिष्ट है कि सर्वाबाध युक्त प्राकृत लक्षण बले न सर्वबाधायुक्त सर्व बाधा का वियोग हो गया है यानी किसी भी प्रकार की भगवान सर्वज्ञ देव को बाधा नहीं है प्राकृत लक्षण बले न प्राकृत स्वभाव स्वभाव से ही बाधा शब्द से बाधा शब्द का मैंने रास होना रसत्व में रास में घात होना नहीं रास हो गया इसका घात हो गया भगवान सर्वज्ञ को किसी भी प्रकार का घात बाधा कुछ भी हो सकता जैसे कोई ध्यानस्थ मुनि है वो केवड़ी हो जाता है सर्वज्ञ हो जाता है उसके पहले उसको कोई उपसर्ग परिश होता है फिर भी ध्यान में विचलित नहीं होने वाले मुनि ध्यान में एकाग्र रहते रहते जब अपनी पूर्ण दिशा में आ जाते हैं तो बाह्य उपसर्ग परिश भी उसको रहते हैं सर्वज्ञ को कोई बाधा हो सकती है इस प्रकार का कर्म का उदय नहीं है तो उदय का निमित्त रूप नो कर्म भी हिसाब ये स्पष्ट है कि क्यों नहीं है तो जब कर्म नहीं है कर्म का उदय नहीं है तो कर्म का उदय के निमित्त से होने वाला कोई प्रसंग भी नहीं ऐसा करा तो सर्वज्ञ भगवान को कोई बाधा होती नहीं आसमंतात आबाधा पीड़ा आबाधा सर्वास्ता सर्वाबाधास्ता भी युक्त रहित सर्वबाधा युक्त संस्कृत में अंदर संस्कृत में ऐसे व्युत्पत्ति अर्थ करने की पद्धति है। जैसे एक शब्द है उसकी परिभाषा करते हैं, डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, तो संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति अर्थ की जाती है। उल्लख प्रकार के बर्बादी है सर्वा बाधा, वो शब्द है ना, सर्वा बाधा सर्व आबाध युक्त हो, ऐसा शब्द है, सर्व आबाध युक्त हो ऐसा शब्द है। तो आ शब्द पड़ा है, सर्व सर्व आ बाध, इतना शब्द है, तीन शब्द है। तो आ पहले लिया है, आ मैंने समन्ता बाधा, आ मैंने समन्ता संपूर्ण, आज्ञा, आज्ञा शब्द यहाँ से आया है, ऐसे ज्ञान है, ज्ञान में कोई बाकी, संपूर्ण ज्ञान में कुछ नहीं बाकी रहता है, उसको आज्ञा कहने में आता है। भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा है, इसका क्या मतलब, आज्ञा में हुक्म नहीं, ये तो रूढ़ी अर्थ है, आज्ञा का जो अर्थ होता है जो हुक्म, ये तो एक रूढ़ी अर्थ है, कन्वर्टेड है, मूल में ये शब्द अर्थ नहीं होता है। आज्ञा मैंने ज्ञान के अंदर में जो है, परिपूर्ण ज्ञान के भीतर में है, इसके बाहर कुछ नहीं रहता है, उसको आज्ञा कहने में आता है। तो बहुत शब्द है, उसको आगे आ लगता है, फिर उसको उसके बाहर नहीं रहता है, उसको हुक्म कहने में आता है, उसको सर्वज्ञ का ज्ञान कहने में आता है, ज्ञान को आज्ञा कहने में आता है। आ मैंने समन्तात, समन्तात मैंने संपूर्ण बाधा, संपूर्ण बाधा, बाधा मैंने पीड़ा, संपूर्ण बाधा संपूर्ण पीड़ा, उसको आबाधा, उसको आबाधा कहने में आता है। सर्वाच यानी उसको सर्व, आ मैंने सर्व, और सर्व सर्वाचरा सर्वथा प्रकारे, आबाधाच उसको सर्वथा प्रकार है, बाधा उसको आबाधा कहने में आता है। सर्वाबाधा ताभी युक्त, सर्व सर्व प्रकार की बाधा से युक्त, मैंने योग, योग मैंने रहित, युक्त हो रहित हो, उसको सर्वाबाधा युक्त हो, उसको सर्वाबाधा युक्त कहने में आता है। सर्वाबाधा युक्त का ये डेफिनेशन दिया संस्कृत में, संस्कृत में इसका विश्लेषण किया। पुनश्च किम रूप हो, फिर कैसे हैं कि समंत सव शोक सव खसो शोखणान ढो, समंत तह चारों ओर से सामस्य न, समंत तह मैंने सामस्य न समस्त प्रकार स्पर्शन आदि सर्वाहा अक्ष सौख्य ज्ञानाद्य, स्पर्शन आदि स्पर्श रूप रस गंध वर्ण जितना भी सर्व प्रकार का इंद्रिय सुख है, तो स्पर्शन आदि सर्व अक्ष सौख्य पांचों स्पर्श आदि मैंने पांचों प्रकार का जो इंद्रिय सुख है, ज्ञानाद्य और ज्ञान है, उसे समृद्ध समन्ततः सर्व प्रकारे सर्वार्थ प्रदेशे सर्व समन्ततः मैंने सर्व प्रकारे प्रदेशे वा स्पर्शनादि सर्व इंद्रियाणां संबंधिन संबंधित्वेन ये ज्ञान सौख्येन द्वे ताभ्याम आद्यः परिपूर्णः इति अर्थः। क्या मैं आद्यः मैंने समृद्ध मैंने परिपूर्ण, ऐसा अर्थ है। क्या था कि सर्व आत्म प्रदेश में स्पर्श आदि प्रकार के जो सर्व इंद्रिय संबंधी सुख है, ज्ञान और सुख है, इससे परिपूर्ण है मैंने इंद्रिय सुख है, इससे परिपूर्ण है मैंने इंद्रिय सुख के आगे जितना भी सुख का जो परिपूर्णता है, इससे समृद्ध है, इससे आरूढ़ है, धनाढ्य धनाढ्य ऐसा कहते हैं, सुखनाढ्यो एम लिंग सुख और ज्ञानाढ्य है, सुख और ज्ञान से समृद्ध है, जैसे कोई धन वाला धनाढ्य कहने में आता है, वैसे वो ज्ञान वाला भगवान को ज्ञानाढ्य कहने में आता है। ઇન્દ્રિય સુખ ની વાત લીધી. લોકો એને સુખ માને છે ને, બહુ ઇન્દ્રિય સુખો સુખ માને. સદમ સુખો ક્યાં હોતા હૈ કે એક કાળ મેં એક ઇન્દ્રિય કા સુખ હોતા હૈ, એક કાળ મેં પાંચ ઇન્દ્રિયો હોને પર ભી એક ઇન્દ્રિય કા સુખ હોતા હૈ. દો ઇન્દ્રિય કા વિષય કો એક સાથ સુખ મેં ભોગ સકતે હૈ નહીં, વૈસી સદમ સુખ કી સ્થિતિ હૈ. યે તો પાંચો જ્ઞાન જ્યાં પરિપૂર્ણ હુઆ હૈ, સુખ પરિપૂર્ણ હુઆ હૈ, એ પાંચ ઇન્દ્રિયો સે પાર જો સુખ હૈ, સુખ ઓર જ્ઞાન છે વો પરિપૂર્ણ હૈ. કહેને કા મતલબ યે હૈ કે ઇન્દ્રિય સુખ તો એક એક ક્રમ સે અનુભવ મેં આતા હૈ. યે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર સુખ સે સમૃદ્ધ હૈ, પરિપૂર્ણ હૈ, તો પાંચો ઇન્દ્રિયો સે આગે પાર જીતના જ્ઞાન ઓર સુખ હૈ, સુખ સે વો પરિપૂર્ણ હૈ. તદ યથા વો ઇસ પ્રકાર હૈ. સ્વયં ભગવાન એક દેશ ઉદ્ભવ સાંસારિક જ્ઞાન સુખ કારણ ભૂતાની. સર્વાત્મ પ્રદેશ ઉદ્ભવ સ્વાભાવિક અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સુખ વિનાશકાની, યાની ઇન્દ્રિયાની હું તો જ્ઞાન ઓર સુખ કે નાશક હૈ. ઇન્દ્રિયો જો સુખ હૈ વો તો આત્મિક જ્ઞાન ઓર આત્મિક સુખ કા નાશક હૈ. યાની ઇન્દ્રિયાત્મ કારણ સમય સાર બલી વિનાશયતી તદા તસ્મિન્ન એવ ક્ષણે સમસ્ત બાધા રહિત અતિન્દ્રિય અતિન્દ્રિયમ અનંતમ આત્મ ઉત્થ સુખમ ધ્યાયતી અનુભવતી પરિણમતી. ખુલાસા લ્યા ઇસમે તો એ વાત આ ગઈ હતી, સર્વાત્મ પ્રદેશે સ્પર્શન આદિ જો ઇન્દ્રિયા હૈ વો ઇન્દ્રિય સંબંધી જો સુખ હૈ ઓર જ્ઞાન હૈ ઉસસે વો પરિપૂર્ણ હૈ. ક્યા મતલબ હૈ ઇસકા કે ભગવાન કો ક્યા પાંચે ઇન્દ્રિયો કા સુખ અનુભવ મેં આતા હૈ, તો એસા હૈ નહીં, ઇસકા એ સમાધાન હૈ. તો વો ઇસ પ્રકાર હૈ, ઇસકા પરિપૂર્ણ બતાયા, ઇસકા ઇસ પ્રકાર હૈ તદ યથા એસા કરકે. અયમ ભગવાન યે જો સર્વજ્ઞ ભગવાન હૈ વો એક દેશ ઉદ્ભવ સાંસારિક સુખ કારણ ભૂતાની, જો સંસારિક સુખ કે કારણ હૈ વો એક દેશ ઉદ્ભવ હૈ. એક ઇન્દ્રિયો કા સ્વાદ લેતા હૈ યા એક નાક સે સુનતા હૈ યા કાન સે સુનતા હૈ, વો ક્રમ સે એક દેશ ઉદ્ભવ હોતા હૈ સુખ. એક સાથ પાંચો કા ઉપયોગ હો સકતા નહીં. વાત તો એટલે વાત હૈ કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો કો એક એક વિષય કા જ્ઞાન હૈ, આત્મા કા સર્વ આત્મા કો સર્વ વિષય કા જ્ઞાન હૈ. સ્પર્શ કા જ્ઞાન, રસ કા જ્ઞાન, મેં વો પાંચો કા જ્ઞાન આતા હૈ. તો ઉધર તો ઇસ વાત કો ઉલટા હૈ આવે કે સાંસારિક સુખ કા જ્ઞાન, સાંસારિક જ્ઞાન ઓર સાંસારિક સુખ દોનો બાત લ્યા, દોનો પદ લ્યા, જ્ઞાન ઓર સુખ, ઇસકા કારણ કોણ હૈ કે ઇન્દ્રિય હૈ. ઇન્દ્રિય મેં વો કૈસા કાર્ય હોતા હૈ કે એક દેશ કાર્ય હોતા હૈ, સંપૂર્ણ કા કાર્ય હોતા નહીં, એક દેશ મેં આંશિક રૂપ મેં હોતા હૈ. તો એસે એક દેશ કારણભૂત જે ઇન્દ્રિય હૈ, સર્વાત્મ પ્રદેશ ઉદ્ભવ સ્વાભાવિક અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર સુખ કા વિનાશક હૈ. એસા જો એક દેશ ઇન્દ્રિય કા ઉપયોગ હૈ, જ્ઞાન ઓર સુખ કા જો ભોગના હૈ, વો અતિન્દ્રિય સર્વાત્મ પ્રદેશ સ્વાભાવિક અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર સુખ કા વિનાશ કા કારણ હૈ. એસી જો ઇન્દ્રિયા હૈ, યાની ઇન્દ્રિયાણી, એસી જો ઇન્દ્રિયા હૈ ઉસકો વૈસે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કો નિશ્ચય રત્ન ત્રયાત્મક કારણ સમય સાર બલે ન અતિક્રામતી. એસે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કો નિશ્ચય રત્ન ત્રય મેને સ્વરૂપ કા સમ્યક દર્શન, સ્વસંવેદન સ્વરૂપ કા જ્ઞાન, સ્વરૂપ મેં સ્થિરતા રૂપ ચારિત્ર ऐसा जो निश्चय रत्न पर आत्मा जो कारण समय सार मोक्ष का मार्ग उसको कारण समय सार कहने में आता है। ऐसा जो ध्यान मोक्ष मार्ग में होने वाला जो ध्यान निश्चय रत्न त्रयात्मक है वो ध्यान में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक कार्य भी है। ऐसा कारण समय सार का बल है, ऐसा ध्यान का बल है, अतिक्राम भी जो उसको पार होता है, उसको उल्लंघन करता है। अतिक्राम थी मैंने विनाश है थी, उसको पार होता है, मैंने इंद्रिय ज्ञान का नाश करता है। तस्मिन्ने क्षणे उसी क्षण में समस्त बाधा रहित सन अतीन्द्रियम अनंतम आत्मोथ सुखम ध्यायती अनुभवती परिणमती। उसी क्षण से अव्याबाध बाधा मैंने अव्याबाध होता हुआ अतीन्द्रिय आत्मा से उत्पन्न हुआ जो अतीन्द्रिय सुख है वैसा सुख को परिणमता है, वैसा सुख को अनुभवता है। उसका मतलब वैसा सुख का ध्यान करता है, ये भगवान का ध्यान देता है, जिनेन्द्र भगवान का ये ध्यान है। तो गाय थे उसको नाथ होता है कि केवली नाम अन्य चिंता निरोध लक्षणम ध्यानम नास्ति किंतु इदमेव परम सुखानुभवनम वा ध्यान कार्य भूताम कर्म निर्णाम दृष्टवा ध्यान शब्द उच्चर्य थे। उससे ज्ञात होता है कि केवलियों को अन्य चिंता निरोध लक्षणम ध्यानम नास्ति, दूसरी चिंताओं का निरोध करके ध्यान करना है ऐसा ध्यान का लक्षण केवलियों को होता है। शब्द है ध्यान, सदमस्थों को इस प्रकार का ध्यान की परिभाषा की जाती है कि अन्य चिंता निरोधो ध्यानम, दूसरी चिंता नहीं करते और स्वरूप में एकाग्र रहते हैं, उसको ध्यान कहने में आता है। लेकिन भगवान को तो दूसरी चिंता करने का सवाल ही पैदा होता नहीं, वो तो वितराग है। अन्य चिंता वो राग से करें, राग होवे और अन्य चिंता करे सो बात तो कभी है नहीं। ये दिगंबर समाज में तो मान्यता बहुत चलती है कि इसको माने तो ऐसा होगी, भगवान को माने तो ऐसा होगी। पदमपुरी जयपुर के पास है ना पदमपुरी है, महावीर जी ये कई प्रकार के भगवान तो राज करते ही नहीं, अन्य चिंता करते ही नहीं, लेकिन ये सब प्रकार वैष्णव लोगों में से आ गया। वो लोग मानते हैं कि हमारे भगवान को हम माने तो हमारा भगवान हमारा भला करे, तो वो जैसा रागी बनाता है भगवान को वैसा वो जैन होते हुए भी अपने वितराग भगवान को रागी मान के ऐसा चलते हैं कि इनके पास जाएंगे, इनको मानेंगे 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 मैंने कुछ वहाँ पैसा खर्च करेंगे, पूजा भक्ति आदि करेंगे, गुणस्मरण करेंगे, स्तुति करेंगे तो अपना कुछ भला होगा मैंने संसार की प्रतिकूलताएं बाधाएं हट जाएगी और अनुकूलता है बढ़ जाएगी। ऐसा तो भगवान को तो अन्य चिंता निरोधो ध्यानम नास्ति, अन्य चिंता का निरोध का ध्यान नहीं है। राग होने का तो सवाल ही पैदा होता नहीं, वो तो रागी बनाता है। लेकिन वो तो यहाँ तो आचार्य भगवान जी कहते हैं कि उनको तो अन्य चिंता निरोध ध्यान हो, उस प्रकार का भी ध्यान हम मानते हैं, नहीं ऐसी बात है। वितरागी शास्त्र पढ़ते नहीं है, ये शास्त्र पढ़े नहीं संप्रदाय में, तो कोई पूर्व कर्म के योग से पुण्य योग से आ गए, तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो शास्त्र पढ़े तो विचार आवे कि इस प्रकार का विचार तो ये आचार्यों का विचार से विपरीत है, भगवान का स्वरूप ही राग करने का है ही नहीं। किंतु इदम एव परम सुखानुभवनम वा ध्यान कार्य भूतम कर्म निर्जराम दृष्टवा, दो प्रकार लिया है। परंतु ये जो परम सुख का अनुभव है, इदम एव, ये जो परम सुख का अनुभव है, परम सुख में लीनता है, उसको ध्यान कहते हैं। अथवा ध्यान का कार्यभूत जो कर्म निर्जरा, भगवान को जो कर्म निर्जरा गुण श्रेणी कर्म निर्जरा चली है, ऐसे घाती तो बिल्कुल खत्म हुए हैं, लेकिन अघाती भी की कर्म निर्जरा हो रही है। ऐसा ध्यान का कार्यभूत जो कर्म निर्जरा, वो कर्म निर्जरा को देखकर, कर्म निर्जरा दृष्टवा, उसको देखकर ध्यान शब्द से उच्चार करने में आया है कि भगवान को ध्यान है, ऐसा ध्यान शब्द का उच्चार लगाया है, उच्चार मैंने आरोप किया है कि भगवान को ध्यान है। लेकिन भगवान को कोई पदार्थ की प्राप्ति के लिए ध्यान करना, तो बात बाकी रही नहीं। श्री भगवान ने ध्यान में उपचार छ ही नहीं, श्री भगवान ने ध्यान में उपचार नहीं, तीर्मा ने तीर्मा गुणस्थान सुधी ध्यान में उपचार है, संयोगी ने योगी केवल कल्याण, सिद्ध परमात्मा ने ध्यान में उपचार है नहीं, कोई शास्त्र माने तुम्हारा क्या हो तो दीर्घ तपास कर कर, सिद्ध भगवान ने ध्यान में उपचार है संसारी बात है, विचार कर रह गया ना उसको, इसलिए वो संसारी असिद्ध है, एकमात्र उपचार हो सकता है, केवल को उपचार हो सकता है, सिद्ध परमात्मा को उपचार हो सकता नहीं। ये भूत निगम व्यवहार में से सर्वज्ञ भगवान को संसारी कह सकते हैं, ये नहीं का उपचार कि सिद्ध परमात्मा को लगाने की जरूरत है, ऐसे बात। यदि पुनः संयोगी केवल न हो तृतीय शुक्ल ध्यानम, देखो यही बात तो है नीचे चलो, यदि पुनः संयोगी केवल न तृतीय शुक्ल ध्यानम अयोगी केवल न चतुर्थ शुक्ल ध्यानम भवती इति उक्तम तद उपचारेण ज्ञातव्यम इति सूत्राभिप्राय, ये सूत्र का अभिप्राय तेरवा चौदवा स्थान पर्यंत है, अयोगी संयोगी केवल पर्यंत, इससे आगे की बात है निश्चित परमात्मा की बात है ही नहीं। ये तो पुनः इतने वही आपने कहते उपरांत, उपरांत इसके ऊपर संयोगी केवलियों को शुक्ल ध्यान का तृतीय तीसरा भेद और अयोगी केवलियों को शुक्ल ध्यान का चौथा भेद होता है, यानी तीसरा और चौथा भेद से युक्त होते हैं तेरहवें और चौदहवें स्थान में, इसलिए उपचार से ध्यान जानना चाहिए, उपचारेण ज्ञातव्यम इति सूत्राभिप्राय, वो सूत्र का अभिप्राय इतना है कि तेरहवें और चौदहवें स्थान में शुक्ल ध्यान का भेद लिया है, आगम में ये बात प्रसिद्ध है, इसलिए भगवान को ध्यान ऐसा उपचार करने में। इससे इसे स्पष्ट होता है कि सिद्ध परमात्मा को ध्यान का उपचार होता है, ये संयोग योगी केवली पर्यंत की बात है, ये एक चौथा एक संगमान। हवे अब जो ये जो पूर्व कहा हुआ शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण, उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा जो मोक्ष मार्ग है, ऐसा ही एक मोक्ष मार्ग है, उसी को निश्चित कर रहे हैं, मतलब शुद्धात्मा की उपलब्धि जहाँ न हो वहाँ मोक्ष का मार्ग का अस्तित्व नहीं है, सब संसार का मार्ग है, मोक्ष मार्ग बिल्कुल वहाँ नहीं है, इसी बात को ठोस पुणे से यहाँ रखते हैं। एक हो इतन काल माँ परमार्थ, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा है तो परमार्थ का मोक्ष मार्ग का दूसरा बदल जाता है, ऐसा कभी है। चौथा काल हो या पंचम काल हो, मोक्ष मार्ग तो शुद्धात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है वैसा ही होता है, इसमें कोई फेरफार हो सकता ऐसे को आचार्य महाराज उसी को निश्चित करते हैं। एवं जिना जिनंदा सिद्धा मगम समुत्थिदा समणा दादा नमोत्थम तेसम तस्य निर्वाण मग्गस्य केवल इसको जीन कहते हैं, तीर्थंकरों को जिनेन्द्र कहते हैं और श्रमण को मुनि कहते हैं। ऐसे जितने भी हैं तीन काल में, बुद्ध काल में अनंत हो गए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, विद्यमान हैं और भविष्य में अनंत होंगे, जितने भी हैं वो इसी ही रीति से, इसी एक प्रकार से मार्ग में आरूढ़ होते हुए, मार्ग में मैंने मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए, जितने भी हुए अनंत हो गए अभी, वो एक ही प्रकार के मार्ग में आरूढ़ होकर सिद्ध हुए हैं। कोई जीव दूसरे मार्ग में सिद्ध हुए, कोई दूसरे मार्ग में सिद्ध हुए, कोई दूसरा मार्ग पकड़ के सिद्ध हुए, कोई दूसरा मार्ग पकड़ के सिद्ध हुए, ऐसी वो बात है। तो युक्ति लगा के भरमाते हैं कि कोई पूर्व से आता है यहाँ, कोई पश्चिम से यहाँ आता है, कोई उत्तर से आता है, कोई दक्षिण से आता है, सब एक जगह आता है, तो आ सकता है अलग अलग मार्ग से, कोई पूर्व का मार्ग से आ जाए, कोई पश्चिम का मार्ग से आ जाए, और कोई ऐसी युक्ति भी लगाते हैं कि भाई आठ का जो अंक है वो पांच में तीन जोड़ के भी आठ बना सकते हैं, और चार में चार जोड़ के भी आठ बना सकते हैं, सात में एक दे के भी आठ कर सकते हैं, और छह में दो बना के भी आठ सकते हैं। तो आठ करने का तो बहुत से प्रकार हैं। जैसे मोक्ष का मार्ग एक नहीं होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का मोक्ष मार्ग होना संभव है, वैसे युक्ति लगाते हैं। ये बात इधर संभवित नहीं, ये तो विज्ञान है। ये जो आत्मा नामक जो पदार्थ है, जो चैतन्य वस्तु है, चैतन्य तत्व है, उस पदार्थ का जो विज्ञान है उसमें दो प्रकार संभवित है। विज्ञान में कभी दो प्रकार होता? ये तो आत्मा की एक जो दशा है, मोक्ष है, वो आत्मा की संपूर्ण शुद्ध निर्दोष पवित्र दशा है। वो दशा की उपलब्धि का जो विज्ञान है उसका एक ही प्रकार है, दो प्रकार उसमें हो सकता नहीं, नहीं। तो वो एक ही प्रकार है, इस बात को यहाँ आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि प्रकार दो नहीं है, प्रकार एक ही है। और वो कहते हैं कि ये जो प्रकार है वो प्रकार हमने धारण किया है, किसी का में आचार्य भगवान ये कहेंगे कि ये जो मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष मार्ग में हम आए हुए हैं, मोक्ष मार्ग को हम साक्षात अनुभूति करते हैं, और अनुभूति करते होते हुए ये बात कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग चिन्हकाल में दो वर्ष मुक्ता नहीं, ऐसी बात। अभी तो ये जो दिगंबर संप्रदाय में जो गड़बड़ी है वो भी काल के हिसाब से है, काल भी पंचम आ रहा है फिर गया है तो फिर वो मुनि मोक्ष मार्ग तो मुनिपणा मोक्ष मार्ग है ना प्रसिद्ध, तो उसमें जो फेरफार करते हैं शास्त्र के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो वो काल का बाना लेकर करते हैं। जो काल फिर गया है तो थोड़ा फेरफार चला लो भी, चलो थोड़ा फेरफार से मोक्ष मार्ग चलाओ, तो ऐसा मोक्ष मार्ग चल सकता। वो बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग मानना वो तो मार्ग को विपरीत रूप से प्रसिद्ध करना है, और मूल मार्ग को उसमें तो निषेध करने की बात है। मार्ग के अलावा मार्ग को छोड़ के दूसरी बात को सम्मत करना तो अनंत सिद्ध हुए, अनंत जिनेन्द्र हुए, अनंत मुनि हुए, उन सबों उन सब का मार्ग का विरोध करने के बराबर है। ये कोई सामान्य गुना है? ऐसी ये बड़ी बात है। इसका फल देखने में आवे तो इसका फल निगोद है, इसका दूसरा कोई फल हो सकता? क्या बताया कि उसने जो आगे रीत बताई उसी पद्धति से मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो। नमस्तु उसको नमस्तु कहने में आता है, उसको नमस्कार हो, नमस्कार हो उनको, तेभ्य हमने उनको और उसके मार्ग को निर्वाण मार्ग को। मैं वो सिद्धों को भी नमस्कार करता हूँ और जो मार्ग पे चल के वो सिद्ध हुए उस मार्ग को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन कहते हैं? ये आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य देव खुद कह रहे हैं। क्या भाव आया? जादान उठू मोक्ष गए, श्रमणा जाता हा ज्यादा मैंने जाता, सिद्धा हा ज्यादा जो सिद्ध हुए हैं, ज्यादा मैंने जन्म हुए सिद्ध हुए हैं, नमोस्तु तेभ्य उसको मैं नमस्कार करता, नमो नमोत्थू तेसिम उसको नमस्कार करता हूँ। तस्य निर्माण मगस्त और उनके जो निर्वाण का जो मार्ग है मोक्ष का मार्ग है उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। कितना भाव आया है? कुंद कुंद आचार्य देव को ये मोक्ष का मार्ग एक ही है, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, इस बात करते हुए ये भाव आया है। टीका, सर्व सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु, चरम शरीरी मैंने जिसका आखिर का देह हो उसी भव में जो मोक्ष में जाने वाले हैं उसको चरम शरीरी कहने में आता है। चरम मैंने आखिर, जिसका आखिर का देह है, आखिर का शरीर है, और जो तीर्थंकर हैं और जो अचरम शरीरी मुमुक्षु हैं, मैंने कोई किसी को दूसरा भव हो तीसरा भव हो दो तीन चार भव में जो मोक्ष में जाने वाले हैं, वैसे मोक्षगामी जितने भी जीव हैं विश्व में वे सब यही यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि द्वारा प्रवर्तते हुए मोक्ष का मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए, जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब आत्मा सब जीव, ये आगे कही, आगे क्या कही, कि शुद्ध आत्म तत्व में प्रवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसा जो विधि, ये विधि है, ये एक विधि है और सब है जो निषेध ने लाया रखा है, विधि और निषेध प्रतिपक्ष है। मोक्ष मार्ग की जो विधि है वो एक ही प्रकार की है कि शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करना, उपयोग की प्रवृत्ति, ज्ञान की प्रवृत्ति जो पर पदार्थ में होती है राग राग सहित, उसको छोड़ के वितराग होके अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना, वही एक मोक्ष मार्ग की विधि है। तीन काल में मोक्ष मार्ग की कोई दूसरी विधि है नहीं, ऐसे बताए इसका संस्कृत तो अवधार्यते केवलम अयम एक एक एव मोक्ष मार्गो न द्वितीय इति। परंतु ऐसा नहीं है कि दूसरी रीत से भी वो सिद्ध हुए हो, ऐसे अनंत चौथा काल आ गए, अनंत पंचम काल भी हो गया, तो चौथा काल में दूसरी विधि थी, दूसरी रीत थी, पंचम काल में रीत बदली, तो चौथे काल में जो सिद्ध हुए वो दूसरी रीति से हुआ या दूसरी पद्धति से हो गया है, ऐसा कभी बन सकता है? एक ही प्रकार है। तो ऐसा है, यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण, शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति करना जिसका लक्षण है, ऐसी एक ही प्रकार की विधि द्वारा मोक्ष मार्ग को जितने भी सिद्ध हुए हैं वो इसी प्रकार से हुए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि दूसरी विधि से भी हुआ हो, एक भी जीव दूसरी विधि से सिद्ध हुआ हो ऐसा तीन काल में बना नहीं। ये कोई अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, ये तो सिद्ध होता है कि केवल यही एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं। देखो एक ही केवलम अयम एक मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति, ये इसका अमृतचंद्राचार्य का मूल शब्द पड़ा है। ततो अवधार्यते, अतः ये सिद्ध होता है कि केवलम अयम एक मोक्ष मार्ग, मोक्षस्य मार्ग एक ही प्रकार का है, मोक्ष का दूसरा मार्ग है नहीं। विस्तार से बस हो, इसका कोई विस्तार करने की जरूरत है, ये निर्विवाद बात है, ऐसा करके लिया। अलम च प्रपंचे न अलमति विस्तरे न, ये शब्द लिया अलम च प्रपंचे न, प्रपंच का शब्दार्थ होता है विस्तार, प्रपंच में नहीं, ये लोग में ये जो पॉलिटिक्स चलता है उसको प्रपंच कहते हैं, ये प्रपंच नहीं, प्रपंच का विस्तार नहीं हो, कोई विस्तार की इसमें जरूरत है नहीं। विस्तार से बस था, दूसरा कोई विस्तार करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये शुद्धात्म तत्व में प्रवर्तित सिद्धों को और वे शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें से भाव और भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नुआगम भाव नमस्कार हो, क्या किया, मेरा नमस्कार हो तो किस प्रकार से मैं नमस्कार करता हूँ। शुद्धात्म तत्व में प्रवर्तित जो सिद्ध सिद्ध परमात्मा है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, और शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ति रूप जो मोक्ष मार्ग है उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ, किस प्रकार से नमस्कार करता हूँ। या आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जिसमें से भाव और भावक का विभाव अस्त हो गया है इस प्रकार से मैं नमस्कार करता, भावक में भाव करने वाला और भाव्य में ने भाव भाव करने योग्य हो उसको भाव्य कहने में आता है। ऐसा एक ही पदार्थ में भावक और भाव्य ऐसा दो विभाग है वो जिसमें अस्त हो गया है। मैं नमस्कार करने वाला और ये मेरा नमस्कार, ये दोनों बात का भेद जिसमें नहीं रहा, अभेद हो गया, मतलब ऐसा अभेद नमस्कार मेरा है उसको नो आगम भाव नमस्कार कहने में आया। मैंने शुद्धोपयोग में आत्मा हुआ, मैं शुद्धोपयोग रूप से मेरा नमस्कार पहुंचता है सिद्धों को और सभी मोक्ष मार्गियों को। मोक्ष मार्ग को नमस्कार करता मतलब क्या है कि मोक्ष मार्ग में जितने भी मुनि हैं वो सबों को मेरा नमस्कार है। तो मैं भी मोक्ष मार्ग में हूँ तो मुझे भी मेरा नमस्कार है। नमस्कार का मतलब क्या है? इसमें क्या है, नमस्कार का एक व्युत्पत्ति अर्थ है, क्या है कि नमना, क्या करते हैं नमस्कार करते वक्त नमते हैं, ढलते हैं नीचे नमते हैं, झुकना। तो अवस्था जब स्वरूप में झुकती है वो नमती है, उसी को भाव नमस्कार कहने में आता है। ऐसा नोआगम भाव नमस्कार यहाँ किया आचार्य भगवान ने कि मेरा मेरे स्वरूप में नोआगम भाव नमस्कार है, मैं मेरा स्वरूप में लीन होता हूँ, मेरे ध्यान में मैं, मेरा जो सिद्ध पद है उसी में मेरी पर्याय नमती है, ढलती है, अभेद होती है, उसमें भावे भाव का भेद रहता नहीं। तो ऐसा परिणाम से सभी सिद्धों को और सभी मोक्ष मार्गियों को नमन पहुंच जाता है, किसी को बाद रहता नहीं। ये नवागम भाव नमस्कार है, ये जो भगवान का जो मंदिर में दर्शन करने का जो रूढ़ी है, रिवाज है, उसमें तो ये परमार्थ भरा हुआ है। ये कोई रूढ़ी की चीज नहीं है कि मंदिर बना लिया और हमेशा दर्शन कर लेना और दर्शन करके फिर अपना कार्य शुरू करना। संसारी लोग कर देना, भगवान का दर्शन सुबह सुबह कर लेना चाहिए, फिर अपना दुकान पे जाना, ये धंधा वगैरह करना या खाना पीना जो कुछ भी है प्रवृत्ति करना संसार की, ये कोई रूढ़ी रिवाज की चीज नहीं, ऐसी ये बात नहीं है। वास्तव में भगवान का प्रतिमा देखते ही मोक्ष और मोक्ष का मोक्ष होने की रीत जिसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है वो प्रसिद्ध ज्ञान में आ जाती है। देखो ये ध्यानस्थ है दशा, तो अंतर्मुखता क्या चीज है वो प्रसिद्ध है इसमें, अंतर्मुख परिणमन क्या चीज है इसकी प्रसिद्धि है इसमें, और इसका पूर्ण स्वरूप भी प्रसिद्ध है। बस उसी को नमस्कार करते हुए अपने स्वरूप में ढलने का प्रयास, तीव्र प्रयास, तीव्र प्रयत्न, ऐसा एक मौका निमित्त को लेके जो उपस्थित होता है, ये मौका उपस्थित होता है निमित्त को देख के, उसको नमस्कार कहने में आया है। एक नमस्कार की पद्धति है। वास्तव में जितने वक्त जब जब भी ये मौका मिलता है तो जिसको ये रीत और पद्धति का ज्ञान है वो तो उसी लाइन में आ जाता है। रूढ़िगत ये वंदन कर लिया, नमस्कार कर लिया और चल गया, ऐसी कोई बात है नहीं। ये तो व्यवहार में, सभी प्रकार के व्यवहार में परमार्थ गुप्त रूप में पड़ा हुआ है, मतलब व्यवहार परमार्थ को ही बताने वाला है, ये बात इसमें से भी स्पष्ट रूप से निकलती है। तो आचार्य महाराज ने ये कहा कि सर्व सिद्धों को और शुद्धात्म में, शुद्धात्म तत्व में शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्ति रूप जो मोक्ष का मार्ग, उसको मैं अभेद भाव से नमस्कार करता हूँ। मोक्ष मार्ग मैंने अवधारित किया है, ये बात लिया है। अवधारितो मोक्ष मार्ग, मैंने मोक्ष मार्ग धारण किया है, अवधारित मैंने धारण किया है, अभी मैं प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष मार्ग में विराजमान हूँ, मैंने शुद्ध आत्म तत्व में मैं अभी मेरी प्रवृत्ति बराबर चल रही है। मोक्ष मार्ग तो शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण दिया है, तो मैं अभी ही मोक्ष मार्ग में बराबर चल रहा हूँ, मेरी अवस्था का मुझे पूरा भान है, ये कोई मैं बेभानपणे में लिख रहा नहीं, ऐसी बात है, लिखते हैं मोक्ष मार्ग में स्थित होकर लिखते हैं, लिखते हैं वो कहने की चीज है, वो तो मोक्ष मार्ग में स्थिर हो रहे हैं, प्रति समय मोक्ष मार्ग में विशेष विशेष रूप से स्थिर हो रहे हैं, लिखने का विकल्प है उस काल में भी, ऐसा नहीं है कि लिखने का विकल्प में गिर रहे हैं और निर्विकल्प हुए जब चढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग में अनन्य रूप से जिसकी प्रगति हो रही है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी साधक ऐसा ही होता है, साधक का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग मैंने अवधारित किया है, कृत्य करने में आता है, कृत्यम अनुष्ठीयते, अनुष्ठान करना उसको अनुष्ठीयते, अनुष्ठान करने योग्य उसको अनुष्ठीय कहने में आता है। तो जो सम्यक दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय है, वो रत्नत्रय है, वो अनुष्ठान है और वो करने में आ रहा है, कृत्य मैंने करने लायक, करने लायक ऐसा जो कार्य है वही मुझसे हो रहा है, कोई अकार्य हो रहा नहीं, ऐसी बात है। कृत्य मैंने करने लायक वही किया जाता है मुझसे, कोई नहीं करने लायक कोई कार्य मुझसे किया जाता नहीं, तभी अभी वर्तमान में, ऐसी बात है। अर्थात मोक्ष मार्ग निश्चित किया है, मैंने मोक्ष मार्ग निश्चित किया है और वही मोक्ष मार्ग में मैं प्रवर्तन कर रहा हूँ, ये बात है। मोक्ष मार्ग में मैं अभी मौजूद रूप से प्रवृत्ति कर रहा हूँ। आचार्य महाराज ने ये बात लिखते समय अपना जो भाव में ठोस पड़ा है उसको साथ साथ प्रति आगे बढ़ाएगी। यूसुफ विराम ये 199 और 200 दोनों सूत्र में ये बात किया है कि ये हम खड़े हैं। देखो हम एष मोक्षाधिकारी, मोक्ष पाने का हमको पूरा पूरा अधिकार है, ऐसी बात लिया। ये कोई अभिमान की बात नहीं है, ये तो वस्तु स्थिति है कि जो हमारा उपयोग क्षण क्षण में अंतर में लीन हो रहा है तो हम पूरे मोक्ष के पूरे अधिकारी हैं। ये तो साक्षात बात है नहीं, स्वयं के विषय में ऐसी बात तो बहुत कम निकलती है, ये ऐसी बात है। शास्त्र लिखते 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 जब बहुत भावान्वित हो जाते हैं